ओम शांति। हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर प्रताप भाई जी का एक हाथों से सभी वेलकम करेंगे। डॉक्टर साहब का मैं 60 परिचय दूंगा। आप वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारी संस्था के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। आप जे वाटुमल ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक भी हैं। आप राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत मेडिकल विंग के उपाध्यक्ष हैं। आप प्रतिवर्ष ज्ञान सरोवर शांतिवन में मेडिकल कॉन्फ्रेंस चिकित्सा सम्मेलनों में आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में डायरेक्टर के रूप में अनेक जिम्मेवारियां भी आप संभालते हैं। सेवाओं के प्रबंधक न्यासी बोर्ड प्रशासनिक कर्मचारियों के बीच एक समन्वय के रूप में आप कार्य करते हैं। कई नई नई सेवाओं के विकास का प्रबंधन भी करना, 3 अस्पतालों की गतिविधियों का भी आप प्रबंधन करते हैं, जैसे पीसी परमार ग्लोबल हॉस्पिटल आई केयर सेंटर, राधा मोहन मेहलोत्रा ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रोमा सेंटर, श्री आदिनाथ फतेह ग्लोबल आई हॉस्पिटल जालोर, सीमड़ी होम तलहटी ग्लोबल हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग, अनेक कॉलेजों की भी आप देखभाल भी करते हैं। साथ साथ आपकी सेवाओं को देखते हुए संस्कृत युवा संस्थान राजस्थान आपकी विशिष्ट सेवाओं और समाज को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए आपको भारत गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो एक बार जोरदार तालियों के द्वारा भाई साहब का वेलकम करेंगे। अभी हम सुनेंगे आदरणीय डॉक्टर प्रताप भाई जी से योग से निरोगी काया।
ओम शांति। बाबा ने हमें जो नई दुनिया की तस्वीर दिखाई है, उसमें क्या होगा? सब सुखी होंगे, अमर होंगे, निरोगी होंगे और धन धान्य से संपन्न होंगे। मुश्किल लगता है क्या हमें कुछ? हमारा लक्ष्य इतना ऊंचा है, पर उसकी तैयारी तो हमें यहां ही करनी है। ऐसे तो बहुत सी बातें आज के संसार में जो है वो शायद शरीर की व्याधियों का कारण है। आप देखें तो आज हवा भी दूषित हो गई है, पानी भी दूषित है, वातावरण ही शरीर को प्रभावित करता है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि मनुष्यों का जो जीवन जीने का तरीका है वही गलत हो गया, वही रॉन्ग हो गया। आप देखें जो बाबा ने हमें दिनचर्या दी है, सुबह अमृत वेले हम उठते हैं और दिन भर अपनी सेवा में बिजी रहते हैं, उसके बाद हम रात को जल्दी विश्राम भी करते हैं, लेकिन वहां तो लोगों का तो जीवन ही विपरीत है, भाग दौड़ का जीवन है। हो सकता है हम में से कुछ लोगों का भी जीवन भाग दौड़ का हो, बहुत मेहनत करनी पड़ती हो, लेकिन सब कुछ करते हुए भी हम अपनी दिनचर्या पर ध्यान देते हैं। और हम सब ये समझते हैं कि अगर सृष्टि परिवर्तन का आधार क्या है, सृष्टि परिवर्तन की फाउंडेशन क्या है, संकल्प तो है। बाबा ने हमको आकर देही अभिमानी से आत्म अभिमानी बनाया, तो उससे हमारे संकल्पों में परिवर्तन हो गया। संकल्प से सिद्धि मिलती है, और कहते हैं कि शास्त्रों में ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये सोचते हैं, बाबा आज भी जैसे हमें कह रहे थे, हमारे संकल्पों का महत्व क्या है? तो जैसे कहते भी हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा रोग नहीं। तो हम में से किसी को कोई चिंता है? किसी को कोई चिंता है? दुनिया में तो कितना भय है। आज देखें तो पूरी दुनिया में हर जगह हलचल चल रही है। कहीं युद्ध है और युद्ध नहीं है तो टेंशन है, और युद्ध हम जो समझते हैं उसका कोई कारण होगा वो भी नहीं लगता, बिना कारण के ही युद्ध चलता रहता। तो जब हमने ये सुना कि खुशी जैसी खुराक नहीं, तो उसका आधार क्या है? हमारी जो प्रकृति है, जिसको हम बाहर की नेचर भी कहें और हमारी अंदर की नेचर भी कहें, अंदर जो हमारे संस्कार हैं और बाहर जो प्रकृति है, बाबा ने कहा है कि आप बच्चों के योग बल से आपके अंदर के संस्कार तो परिवर्तन होंगे लेकिन प्रकृति भी सतोप्रधान बनेगी। वो कैसे बनेगी और कैसे हमें निरोगी काया मिलेगी? आज अगर आप किसी को कहो कि समय ऐसा आने वाला है जब सब निरोगी हो जाएंगे, तो वो मानेंगे? उनको लगता है जो कुछ आज इस दुनिया में चल रहा है उसको रिवर्स करना तो पॉसिबल नहीं है, उसको ठीक करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको मैनेज कर लेते हैं। आप देखिए, किसी को डायबिटीज हो जाती है या किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो उसको वो क्योर तो नहीं कर सकते लेकिन मैनेज कर सकते हैं। दवा देंगे आपको, भोजन के बारे में परहेज बताएंगे, एक्सरसाइज मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ही आप ये कहें कि रोग होंगे ही नहीं, तो वो कैसे होंगे? तो जब हम योग में बैठते हैं, जब बाबा की याद में बैठते हैं, तो हमारे जो संकल्प चलते हैं वो क्या संकल्प होते हैं? हमारे संकल्प होते हैं अपनी प्रकृति को परिवर्तन करने के। जो पहला पहला हमने संकल्प लिया कि मैं ये देह नहीं आत्मा हूं, उससे ही कितना परिवर्तन हो जाता है। आज देखिए, अपने आप को ना पहचानने के कारण ही कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। अभिमान है या मनमुटाव है या ईर्ष्या द्वेष है, उसका कारण क्या है? अगर देह भान में होंगे तो वो सब विकृतियां आएंगी, लेकिन जब हम शुद्ध संकल्प रचते हैं, बाबा हमें क्यों बार बार एम्फेसाइज करते हैं कि हमें व्यर्थ संकल्पों को खत्म करना है? संकल्प एक शक्ति है। जो भी आप संकल्प क्रिएट करते हैं, उस संकल्प से वाइब्रेशंस फैलती हैं, उस संकल्प से तरंगे वातावरण में जाती हैं। अगर हमारे संकल्प पीसफुल हैं, अगर हमारे संकल्प शुद्ध हैं, अगर हमारे संकल्प शक्तिशाली हैं, तो वो वातावरण को वाइब्रेट करते हैं। तो इतने सारी योगी आत्माएं जिनके शुद्ध संकल्प वो वातावरण को प्रभावित करते हैं। अभी देखिए, दुनिया में जो चिंता है, जो निराशा है, जो वाद विवाद है, उसका कारण कई बार तो ऐसा होता है कि हम केवल अनुमान लगाते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा उसने किया होगा। तो जब हमारे संकल्प शुद्ध होते हैं, जो वाइब्रेशन शुद्ध होती हैं, तो वो तत्वों को भी प्रभावित करती हैं, हमारे शरीर को भी प्रभावित करती हैं। जो हम मन में सोचते हैं वो हमारे तन को प्रभावित करता है। तो तो संकल्प जो है शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, तो वो प्रकृति को प्रभावित करते हैं। आज देखें जो चिंता है वो आज सबसे बड़ा कारण है। लोग क्या कहते हैं, हरि शीघ्र, लोग चाहते हैं कि हम थोड़े समय में बहुत कुछ ले लें, बहुत कुछ अचीव लें, उसकी चिंता भी रहती है। और कभी कभी चिंता का कोई कारण नहीं होता। तो इसलिए संकल्पों को शुद्ध बनाना, क्यों बाबा बार बार एम्फेसाइज करते हैं कि बच्चे नेगेटिव संकल्पों पर तो आपने विजय प्राप्त कर ली, लेकिन जो व्यर्थ संकल्प हैं वो हमारी एनर्जी व्यर्थ जा रही है। तो जब हम आज, जैसे आज के दिन रविवार को हम शाम को रोज हर तीसरे रविवार को इंटरनेशनल योग डे मानते हैं और हम मेडिटेशन करते हैं, पूरे विश्व को शुद्ध विचार हैं जो हमारी तरंगे हैं वो सब तक पहुंचती हैं। अब आप देखिए, कोई चेयरफुल हो, खुश रहता हो और वो आपके पास आएगा तो क्या होगा, आप उसको पसंद करेंगे। और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति क्रिटिकल हो, हमेशा क्रिटिसाइज करता रहता हो, सल्क करता रहता हो, दूसरों को ब्लेम करता रहे, तो वो आपके पास आएगा तो आप भी थोड़े सावधान हो जाएंगे। तो इसलिए प्रकृति को परिवर्तन करने के लिए शुद्ध संकल्पों का महत्व बहुत है, क्योंकि ये संकल्प सत्यता पर आधारित है, वो उस अविनाशी ज्ञान पर आधारित है। तो संकल्प से एनर्जी क्रिएट होती है, संकल्प से परिवर्तन होता है। आप देखें कि कोई भी संकल्प हम क्रिएट करते हैं, जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो वो संकल्प हमें एलिवेट करता है। लोग तो दूसरी मेडिटेशन जो करते हैं वो जाते हैं, लेकिन बाबा ये कहता है कि आपको अनासक्त वृत्ति होती है, या आपका संसार से, संसार के विनाशी चीजों से आपका मोह टूटता जाता है, यानी उससे जो लाइटनेस मिलती है, हल्कापन हमें महसूस होता है। आज हम बाजार से गुजरते हैं या कहीं से गुजरते हैं तो हमें कोई चीज डिस्ट्रैक्ट थोड़ी करती है, कोई खींचती थोड़ी है, क्योंकि हमारे काम की ही नहीं है। तो इसलिए संकल्प जो हम क्रिएट करते हैं, जो अनासक्त वृत्ति होती है, जो अटैचमेंट की फीलिंग होती है, वो हमें लाइट बनाती है, वो फिर हमारे जीवन में परिवर्तन का आधार बनती है। तो संकल्प जो हम क्रिएट करते हैं उसकी रचना भी तो हमें ही देखनी पड़ती है। इसलिए बाबा हमेशा एम्फेसाइज ये करते हैं, आज भी बाबा ने कहा कि अगर जैसे क्रोध को विजय प्राप्त करने के, बाबा ने कहा कि एक समाने की शक्ति और एक सहन शक्ति हो, और उसका आधार भी क्या है, हम आ कब सकते हैं, हमारे मन में ये संकल्प हो कि ये हर आत्मा का इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट है, हर एक अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है, हर एक एक्टर का अपना रोल है और सबके डाइवर्स रोल हैं, तो हर एक अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो एक्सेप्टेंस जो है वो सबसे बड़ी बात है, जो मन को शांत बना देती है, जो फुल स्टॉप लगाने में हमें मदद करती है। तो एक्सेप्टेंस के संकल्प, जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये सृष्टि विशाल नाटक है और इसमें सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो फिर मन में प्रश्न नहीं उठेगा, हम स्वीकार करेंगे। जब हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हम बहुत कॉन्फ्लिक्ट से बच जाते हैं। बाबा जैसे कहते हैं ना कि अगर हम क्यों, क्या और कैसे इसके विस्तार में चले जाते हैं, तो जो भी पीसफुल संकल्प हैं, जो खुशी के संकल्प हैं, वो आज भी रिसर्च ये कहते हैं वो हमारे शरीर की बायोकेमिस्ट्री को चेंज करते हैं, शरीर की केमिस्ट्री को चेंज कर देते हैं, जिसको जो हम कहते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, यानी जो हमारे साइकी है, जो हमारे विचार हैं, वो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, नर्वस सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। आजकल तो ऐसी बीमारी को हम ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें शरीर के सिग्नल शुरू कर देते हैं। जब हम हार्टी दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, तो जब विचारों को हम, वैसे भी आपने देखा होगा जब हम योग में बैठते हैं तो हमारे विचार शांत होते हैं, जब हम चिंता में होते हैं हमारे विचारों की स्पीड कितनी तूफान की तरह होती है, तो जब हमारे विचार स्लो होते हैं, शांत होते हैं, तो वो शरीर की बायोकेमिस्ट्री को प्रभावित करते हैं। तो संकल्पों के आधार पर हम अपने हार्मोन्स को शांत करते हैं, पॉजिटिव हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। तो योग के द्वारा जो आज भी हम देखें, जो योगी जीवन है, उस योगी जीवन में जो हमारे मन में शांति आती है, हमारी दिनचर्या में परिवर्तन हो जाता है। कहते हैं कि 1 आवर स्लीप बिफोर 12 इज इक्वल टू 2 आवर स्लीप आफ्टर 12। एक घंटा रात को 12 बजे से हम जो सोते हैं वो रात को 12 बजे के बाद सोने वाले 2 घंटों के बराबर है। शरीर का एक रिदम होता है जिसको हम सिरसेडियन रिदम कहते हैं, वो सब अब डिस्टर्ब हो गया है। अब जाएं तो कहते हैं कि बड़े शहरों में जाएं, दिल्ली बॉम्बे में, कहते हैं ये शहर तो 24 घंटे जागता है, लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ता है? उसका प्रभाव पड़ता है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो सतयुगी दुनिया में तो हमारी जो दिनचर्या है, जो जैसे बाबा कहते हैं हम उठेंगे तो पक्षियों की आवाज से उठेंगे, तो यानी वो जो सनराइज के साथ हमारा साइकिल शुरू होता है वो अब सब डिस्टर्ब हो चुका है और वो सब अब फिर नॉर्मल हो जाएगा, सिरसेडियन रिदम जो है। तो उस रिदम को समझाने में, हालांकि हम लोगों को भारत में तो कितने सालों से पता था, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये सिरसेडियन रिदम समझाया उसको नोबेल प्राइज मिल गया। यानी जो चीज समय पर करते हैं, समय पर उठना, समय पर भोजन करना, अब सतयुग की दुनिया में ये सब होता है, ये परिवर्तन अपने आप हो जाता है और बाबा हमारे जीवन में ये सब परिवर्तन ला रहे हैं। संकल्प में बहुत ताकत है, संकल्पों से हम एलिवेटेड महसूस करते हैं, संकल्पों से ही हम डिप्रेस्ड महसूस करते हैं। आप कहते भी हैं ना कि देखिए सब लोग अपने अपने सांस गिनती के लेके आए होते हैं, तो ये देखा गया है कि जिनके संकल्प शांत होते हैं, पीसफुल होते हैं, उनकी रेस्पिरेशन रेट भी कम हो जाती है। तो जब वो रेस्पिरेशन रेट 1 घंटे में आपकी कम हो जाएगी बाकी से कंपैरिजन में, तो आपकी आयु तो बढ़ेगी ना। श्वास तो आप गिनती के लेके आए हैं, आज की दुनिया की बात कर। तो हम सबको ये जो ज्ञान मिला है, उस ज्ञान के आधार से जो हम अपनी प्रकृति में परिवर्तन लाते हैं, उस प्रकृति के आधार पर ही बाहर की प्रकृति में परिवर्तन आता है। उसको भी नेचर कहते हैं, इसको भी नेचर कहते हैं, देखो स्वभाव और वो प्रकृति। तो बाबा ने जो पॉजिटिविटी पे एम्फेसाइज किया है, जो शांति पे एम्फेसाइज किया है, साथ में अब एक बात और हमें समझ में आती है। हम सब लोग कहते हैं किसी को कोई रोग होता है तो कहते हैं ये तो इसके पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है, लेकिन हम शॉर्ट टर्म में तो समझ सकते हैं ना। अगर मान लीजिए हमने कोई ऐसी चीज ली जो हमें सूट नहीं करती तो हमें इनडाइजेशन हो जाती है, वो क्यों हुई कि हमने वो भोजन लिया। तो कर्मों का जो कनेक्शन है हमारी प्राप्ति से, तो बाबा ने जो हमें श्रेष्ठ कर्म करने सिखा दिया उसके आधार पे वो कहते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप। न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कर्मों का सिद्धांत जो है वो भी हमारी प्रकृति को परिवर्तन करता है। अब जो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं उसका प्रभाव क्या होगा? उसका प्रभाव होगा श्रेष्ठ हमारे पास वापस आएगा। तो हमारी जो निरोगी काया है उसके लिए हमें कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाना है। कर्म भी श्रेष्ठ क्या होते हैं? तो हर कर्म से पहले हम क्या सोचते हैं कि जो भी कर्म हम करें वो सबको सुख देने वाला हो। तो कर्म के पीछे कर्म से भी पहले आती है इंटेंशन कि हमारी वृत्ति क्या है। कोई भी हम कर्म करते हैं उसके पीछे हमारी इंटेंशन क्या है, वृत्ति क्या है। आप भले ही अच्छा कर्म कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे वृत्ति हमारी क्या है। तो वृत्ति अगर हमारी शुद्ध होती है और वृत्ति में अगर सबको मदद करने की भावना होती है, सबको सुख देने की भावना होती है, वो भावना जो है वो महत्वपूर्ण है। हम कुछ भी कार्य करते हैं, पुण्य करते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं, सेवा में सहयोगी बनते हैं, तो उसके पीछे हमारी इंटेंशन क्या होती है? सबका भला हो, सबको बाबा का मैसेज मिले। तो ये जो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं उस श्रेष्ठ कर्म से भी हम प्रवृत्ति को, प्रकृति को परिवर्तन करने के लिए मदद कर रहे हैं। क्योंकि आज जो हम क्रिएट कर रहे हैं वही हमें आगे मिलेगा, भविष्य की रचना के लिए हमारे श्रेष्ठ कर्म। बाबा बार बार एम्फेसाइज करते हैं कि हम सबको दुआएं दें और दुआएं लें। और दुआएं कैसे मिलती हैं? दुआएं मिलती हैं निस्वार्थ सेवा से, दुआएं मिलती हैं बिना कहे कुछ करने से। तो निस्वार्थ सेवा है और वो जो कर्म हम करते हैं, कर्म विश्व की सेवा के लिए हो सकते हैं, कर्म किसी को मुश्किल समय में मदद करने के लिए हो सकते हैं। बाबा भी हम यज्ञ के हिस्ट्री में सुनते हैं कि जब डिफिकल्ट टाइम था तो जिन लोगों ने यज्ञ में मदद की तो बाबा ने उनको हमेशा याद रखा। तो इसलिए कर्म हमारे श्रेष्ठ हो, उच्च क्वालिटी के हों। अब उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हमारे जीवन में कुछ वैल्यूज चाहिए, गुण चाहिए, कुछ विशेषताएं चाहिए। वो गुण जो है गुणों के आधार पर हम कर्म करेंगे। दादी जानकी कहा करती थी सच्चाई, सफाई और सादगी। सच्चाई बहुत जरूरी है, जिसको आप दूसरे शब्दों में ऑनेस्टी कह सकते हैं, इंटेग्रिटी कह सकते हैं। जब हम कोई चीज सच्चे इरादे से करते हैं उसका इफेक्ट 10 times हो जाता है, 100 times हो जाता है। उसके लिए बाबा जैसे कहते हैं उसके लिए हमें थोड़ी शक्ति भी चाहिए, डिटर्मिनेशन भी चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज कार्य जो हम ऑनेस्टी से करते हैं उसके लिए पहले अपने आप को तैयार करना पड़ता है। और अभी तो ये रिसर्च बता रही है, साइंस बता रही है कि जो ऑनेस्ट होते हैं, जो कमिटेड होते हैं, जिनके लाइफ में सेंस ऑफ कंट्रोल होता है और जो मुश्किलों को मुश्किल नहीं समझ के उसको एक अवसर समझते हैं आगे बढ़ने का, उनका जो इम्यूनिटी है वो बढ़ती है। अब इम्यूनिटी भी क्या है? बीमारी से लड़ने की ताकत है, जिसको आप प्रतिरक्षा कहते हैं। हमारा डिफेंस सिस्टम है, तो वो स्ट्रांग, ये अभी यहां की रिसर्च बता रही है, जब हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हमारा अंदर बाहर सच्चा हो, अंदर बाहर एक जैसा हो, बाबा जैसे कहते हैं, हमारे शब्द, हमारा सोचना और हमारा कर्म एक हो, उसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो, तो ये हमारी प्रकृति को परिवर्तन करता है। इसको हम सही मानों में ऑनेस्टी कहते हैं। और सफाई क्या है? क्लैनलीनेस है। सफाई को आप प्योरिटी कह लें। और जब आप प्योर होते हैं, जब आप क्लीन होते हैं, फिर उसके बाद क्या होती है? आपके जीवन में रूहानियत आती है, और वो रूहानियत फिर आपके कर्मों में रिफ्लेक्ट करती है। तो उसके कारण जो आपके कर्मों का खाता बन रहा है, वो पॉजिटिव बन रहा है, हमारा ट्रेजर बढ़ रहा है। ऑनेस्टी के साथ साथ उन्होंने ये भी स्टडी किया कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, उसको कंपैशन कहें, करुणा कहें, तो उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत पावरफुल होता है। तो अभी हमने अपने हाथ में जो विश्व परिवर्तन का कार्य लिया है, उसमें हमारा तो कोई स्वार्थ नहीं है ना, लेकिन यह कि सबका भला हो। वो कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे बाणे सबदा भला, तो ये हमारी चढ़ती कला से पूरे विश्व का परिवर्तन होने वाला है। तो हम सबकी जो चढ़ती कला होगी, उससे ही तो विश्व परिवर्तन होगा, प्रकृति भी परिवर्तन होगी। तो ये जो हमारे मन में ये भाव है सबको सहयोग देने का, सबकी निस्वार्थ सेवा देने का, तो उससे भी हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, हमारे सिस्टम चेंज होता है। जो हमारे सिस्टम्स हैं वो बैलेंस में आ जाते हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक सिंपैथेटिक, एक पैरासिंपैथेटिक। वो दोनों बैलेंस में आ जाते हैं। वो हमारी प्रकृति, हमारी जो नेचर है, स्वभाव है, उसकी वजह से उनमें परिवर्तन होता है। नहीं तो दुनिया में तो सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो ज्यादा एक्टिवेटेड रहता है, और उससे वो जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो शरीर को डैमेज करते हैं। तो योग के द्वारा हमारे दोनों सिस्टम जो है वो बैलेंस में आ जाते हैं, और बैलेंस में जब हम चलते हैं तो जीवन में स्टेबिलिटी आती है, स्थिरता आती है। तो उसके ये जो हमारा पार्ट है विश्व परिवर्तन के कार्य में, सबको ईश्वरीय ज्ञान शेयर करने का, सहयोग देने का, उससे हमारे शरीर की जो रचना है, शरीर के जो अंतर अंदर की जो रचना, वो परिवर्तन होती है। तो ऑनेस्टी है, सहयोग देना है, फिर जो हमारे जीवन में पीस आती है, पीस शांति आती है, जो हमारा स्वधर्म है। हालांकि आप देखो, शांत रहना या शांति की बात करना बहुत सहज है, लेकिन शांत रहना कितना मुश्किल है। बड़ी बड़ी बातें हम सब क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन मुश्किल कहाँ आती है? छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों में। कहीं देरी हो गई, कहीं कोई कार्य हम करना चाहते थे, कोई चीज हमें चाहिए थी, समय पर नहीं मिली, तो वो जो माइनर हैसल्स हैं, वो भी हमारी प्रकृति को डिस्टर्ब करती हैं। रेपिटेटिव हैसल्स, जो बार बार वही चीज होती रहे, तो उसके लिए पीस चाहिए, उसके लिए पॉजिटिविटी चाहिए। और पीस और पॉजिटिविटी से हम अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित कर सकते हैं। बाबा जो हमें कहता है कि हमारे हमारी चलन और हमारे चेहरे से सेवा होगी, वो कब होगी? जब हम पीसफुल होंगे, स्टेबल होंगे। अब हम कहते हैं कि हमें हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेंगे, फरिश्ता सो देवता बनेंगे, उसके स्टेप भी क्यों हैं? ब्राह्मण हमारा पुरुषार्थी जीवन है, फरिश्तापन से हम सारे बोझ से परे हो जाते हैं, हम अपने आप को लाइट महसूस करते हैं। बाबा ने एक मुरली में भी कहा भी था, बोझ भी किस चीज का है? हमारे पुराने संस्कारों का है। तो जब हम लिफ्ट करते हैं अपने आप को, ऊंचा उठाते हैं, फरिश्तेपन की स्टेज जो है वो लाइट भी होगी और लाइट एमिट भी करेगी, यानी दूसरों को रास्ता दिखाने के निमित्त भी बनेगी। तो हम उससे भी अपनी प्रकृति को भी परिवर्तन करते हैं। अब बाबा ने जो हमें सात्विक भोजन की बात बताई है, केवल सात्विक भोजन नहीं, लेकिन भोजन भी जो बनाते हैं उनकी भी जो वृत्ति है वो भी प्रभावित करती है। तो ये जो सूक्ष्म बातें हैं, फिर हम जब भोजन ग्रहण करते हैं, बाबा की याद में ग्रहण करते हैं, शांति से ग्रहण करते हैं, व्यर्थ चिंतन नहीं करते हुए ग्रहण करते हैं, तो उसका प्रभाव भी हमारी प्रकृति पर पड़ता है। उसको लोग आजकल कहते हैं माइंडफुलनेस ईटिंग। लोगों को ये पता भी नहीं रहता कि वो क्या खा रहे हैं। आज दुनिया में जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है ओबेसिटी की, उसका कारण ये है कि हम जब खा रहे हैं तो हम कॉन्शियस ही नहीं है। हमारा ध्यान या तो टेलीविजन की तरफ होगा या टेलीविजन से दूर कहीं और बातों में होगा, सोशल मीडिया में होगा। तो बाबा ने जो हमें ये सिस्टम बनाया हमारा कि हम कितनी बातों से बच गए, बाहर की दुनिया में हम बाहर की कंपनी से बच गए, क्योंकि संघ का भी तो बहुत फर्क पड़ता है ना। तो ये भोजन की बात से हमारा संघ भी शुद्ध हो गया। तो भोजन भी बाबा ने हमें क्या सिखाया। आज साइंस मान रही है कि जो प्लांट बेस्ड डाइट है, जो भोजन शाकाहारी है, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो लोगों के आजकल लहर है वीगन बनने की, तो वो किस लिए है? क्योंकि हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, और हमें तो बाबा ने पहले से बता दिया। और फिर शांति में भोजन करना, और योगी आत्माओं ने जो भोजन बनाया है, तो भोजन का भी जो महत्व है वो बहुत बड़ा है। अभी आजकल जब लोग किसी को कहो कि आप एक्सरसाइज करो अपना वेट कम करने के लिए या भोजन कम, वो कहते नहीं हम बेरियाट्रिक सर्जरी करवा लेंगे। वो सोचते हैं कि हम, लेकिन कारण तो नहीं हुआ ना निवारण। ऐसे नींद नहीं आती तो हमें ये सोचना पड़ेगा ना, नींद नहीं आने का कारण क्या है। हो सकता है आपके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण नींद नहीं आ रही, कभी स्नोरिंग होती है, कभी कुछ होता है। तो बाबा ने जैसे हमें कहा कि सोने से पहले अपने आप अपना चार्ट लिखो या बाबा को पत्र लिखो, अपने मन को सभी बोझों से हल्का करो, तो वो दिनचर्या हमारी परिवर्तन हो गई। नींद तो हमें ऐसे आती है जैसे बिस्तर पे गए और नींद आ गई। आज तो बाबा ने कहा ना कि स्वप्न में भी हमें उदासी नहीं आनी चाहिए, स्वप्न में भी निराशा नहीं आए, स्वप्न में भी हम दिल शिकस्त नहीं हो। तो ये जो कुछ भी हमारे संस्कारों में परिवर्तन हो रहा है, ये हमारी प्रकृति को पहले परिवर्तन करता है, फिर बाहर की प्रकृति को परिवर्तन करता है। आज बहुत से लोग जो है ना अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं, करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो बाबा ने हमें एक जैसे अपनी लाइफ को, जैसे हम कहते हैं ना हम यहां स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो फिर नई दुनिया में विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। हम अपने सेंसेस के मास्टर बन जाते हैं, अपनी कर्म इंद्रियों के अधिकारी बन जाते हैं, तो बहुत सी मुश्किलों से बच जाते हैं। हमें क्या देखना है, क्या सुनना है, वो हमें पता लगता है। तो योग से निरोगी काया जो बनती है, वो पहले अपनी प्रकृति को परिवर्तन करना पड़ता है, फिर बाहर की प्रकृति परिवर्तन होती है। तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। एक नेचुरल लाइफ हो हमारी, सहज लाइफ हो, सहज योगी जीवन हम कहते हैं, उसमें जो कंपोनेंट है सहज योगी जीवन में, ये कि नेचुरल योगी जो योग है वो हमारे जीवन का अंग बन जाए। मेडिटेशन लोग भी करते हैं आजकल, तो कितने ही प्रकार के मेडिटेशन है, कितने प्रकार की साधना, लेकिन हमको बाबा ने कहा कि हमारा योगी जीवन है, केवल सुबह शाम योग करना नहीं, लेकिन जीवन ही योगी बन जाए। वो मैंने एक जगह पढ़ा था, वो लिखा था, सुनो लोगों, छोड़ो भोग, कटे रोग, करो योग। तो ये जो भोगी जीवन बन गया है, जो यूं कहे इंडल्जेंस की लाइफ बन गई है, उससे जब योगी जीवन में हम आते हैं, तो उससे हमारे जीवन में जो परिवर्तन आता है, हमारे जीवन में जो संतुष्टता आती है, कंटेंटमेंट आती है। क्योंकि आजकल तृप्ति जिसे हम कहें वो नहीं होती लोगों को। तो जो बाबा ने हमें ये सिखाया है कि योगी जीवन में जो संतुष्टता आती है, कंटेंटमेंट आती है, उसका भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। कंटेंटेड व्यक्ति जो होगा, वो कंटेंटेड व्यक्ति के जीवन में क्या होगा, वह जल्दी आकर्षित नहीं होगा। तो कंटेंटमेंट भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं शायद संतोष होना वो ढीला हो जाना है। कई लोग ये भी कहते हैं कि असंतोष जो है वो प्रगति की जननी है, कि अगर आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन कंटेंटमेंट जो है वो इनर फीलिंग है कि जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है या जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उससे हम संतुष्ट हैं, लेकिन ये नहीं कि हमारा पुरुषार्थ रुक जाएगा। पुरुषार्थ हमें ये तो पता है कि हम अपनी चेकिंग करते हैं कि हमें कहां तक पहुंचना है, कंप्लीट भी बनना है और परफेक्ट भी बनना है। जो 16 कला संपूर्ण की बात करते हैं वो भी बनना है, और फिर परफेक्ट भी, सर्वगुण संपन्न भी बनना है। तो जब सर्वगुण संपन्न बनेंगे, 16 कला संपूर्ण बनेंगे, तो परिवर्तन आएगा, उससे फिर प्रकृति परिवर्तन होगी। लेकिन वो सब पुरुषार्थ तो हमें यहां ही करना है। हमारे जीवन में जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, बहुत से चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उनके बीच में रहते हुए हमें जो संतुष्टता होगी, संतुष्टता से फिर हमें जो जीवन में आगे बढ़ने की वो स्पीड भी हमारी बढ़ जाएगी। अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे तो हमारे मन में प्रश्न रहेंगे, और जब प्रश्नों में उलझ जाते हैं तो स्पीड अपने आप कम हो जाती है। इसलिए जीवन में संतुष्ट रहना भी जरूरी है, कंटेंटमेंट चाहिए। तो संतोष जो है वो हमारे जीवन में हमें बहुत सी मुश्किलों से बचा देता है। तो बाबा ने जो हमें ये एक होलिस्टिक ज्ञान दिया है, ये ज्ञान जो दिया है वो न केवल इस जीवन के लिए, लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने अनेक आने वाले जीवन के लिए। लोग तो विनाशी प्राप्ति के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और हमारी ये सहज मेहनत है अविनाशी प्राप्ति के लिए। केवल हमें दृढ़ निश्चय चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। वो कहते हैं ना, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, डाउट्स कैन क्रिएट ऑल्सो। थोड़ा सा भी संशय आ गया, अपने आप में आ गया, जब हमारे अपना आत्मविश्वास होता है तो लोगों का भी हमारे में विश्वास बढ़ जाता है, तो हमारा आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ाएगा, हमारा निश्चय हमें आगे बढ़ाएगा। तो हमें यहां ही अपने जीवन में वो परफेक्ट भी बनना है और संपन्न कंप्लीट भी बनना है, 16 कला संपूर्ण भी बनना है और सर्वगुण संपन्न भी बनना है। जब वो बनेंगे तब वो जीवन में जो परिवर्तन आएगा वो परिवर्तन फिर विश्व परिवर्तन के आधार बनेगा। क्योंकि जो कुछ भी हम कभी कभी सोचते हैं ना, हमारा अंतिम समय का पुरुषार्थ क्या हो, बाबा ने हमें ये कहा ना कि अंतिम समय के पुरुषार्थ के लिए हमें लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए, अभी से हमें अपनी तैयारी करनी होगी, लंबे समय से हमें अभ्यास करना होगा। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि जो कुछ भी होगा अचानक होगा, तो अचानक कोई चीज होने वाली होती है तो उसके लिए एवर रेडी रहना पड़ता है ना, हमें हमेशा तैयार भी रहना पड़ेगा। और उसके लिए जैसे लंबे समय का अभ्यास क्या है, लंबे समय का अभ्यास यही है कि हम अपने जीवन में जो सर्वगुण धारण करने हैं उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, हम टिक करते जाएं कि ये गुण में हम संपन्न बन गए हैं, इस कार्य में हमने विशेषता प्राप्त कर ली है। तो कंप्लीट और परफेक्ट बनने के लिए हमें अपने संकल्पों को आधार बनाना है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, और जो बाबा ने हमें दिव्य गुण दिए हैं उनको हमें अपने जीवन में धारण करना है, तो उससे ही हमारी प्रकृति परिवर्तन होगी, हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे और उससे फिर संसार परिवर्तन होगा, प्रकृति भी प्रभावित हो जाती है। आप देखें प्रकृति में भी क्या चाहिए, प्रकृति में भी शुद्धता चाहिए, प्रकृति भी अगर शुद्ध होती है, जमीन शुद्ध होती है, पानी शुद्ध होता है, तो सब कुछ प्रॉपरली ग्रो करता है। ऐसे हमें भी अपनी प्रकृति को शुद्ध बनाना है, हमारी प्रकृति सबको सुख देने वाली हो तो उससे परिवर्तन आएगा और उससे हम अपने जीवन को मैनेज कर पाए। फिर गुण जो बाबा ने हमें दिए हैं वो गुणों पे भी हमें अटेंशन देना है, चाहे वो जीवन में धैर्यता है या जीवन में सहयोग की भावना है या जीवन में सबको स्वीकार करने की भावना है। हम मन में किसी के प्रति कोई गांठ नहीं रखें, कभी कोई भूल करता है तो वो हम गांठ बना लेते हैं, वो हमारी उन्नति में रुकावट बनेगा। क्योंकि जब किसी भी, बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, किसी भी आत्मा के प्रति हमारे मन में द्वेष नहीं हो, भावना नेगेटिव भावना नहीं हो, नहीं तो वो एक भी कमी जो है लास्ट समय में हमें मुश्किल क्रिएट करेगी। तो इसलिए अगर अपने आप को, हमें अपने आप से जो मेहनत करनी है वो जो हमारी स्थिति ऊंच बनेगी उसके साथ साथ हमारी प्रकृति भी निरोगी बनेगी, उसके लिए हमें लंबे समय की मेहनत चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए डॉक्टर भी हमें एडवाइस करते हैं, कोई तकलीफ के लिए दवा देते हैं, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि दवा लंबे समय तक खानी पड़ेगी। तो बाबा ने भी जो हमें शिक्षाएं दी हैं, बाबा ने भी जो हमें हमारे संस्कार परिवर्तन करने की विधि बताई है, वो है तो बाबा की याद। बाबा यही कहते हैं ना कि अगर मुझे आप याद करोगे तो आपकी 21, वो गारंटी करता है, बाबा मुरली में कहता है, मैं गारंटी करता हूं कि 21 जन्म के लिए निरोगी काया मिलेगी, तो रोग भोग से समाप्त होंगे, रोग याद से समाप्त होंगे और याद से ही हमारी प्रकृति परिवर्तन होगी। आज देखें दुनिया में जो अभ्यास हो रहा है वो सोचते हैं कि अगर हम पेड़ ज्यादा लगाएंगे परिवर्तन होगी तो शुद्ध हवा मिलेगी, लेकिन बाबा हमें ये बताते हैं कि मनुष्य ही प्रकृति को परिवर्तन करने का आधार बनेगा। हमारे परिवर्तन से प्रकृति परिवर्तन होगी। डॉक्टर्स भी हमें तब मदद कर सकते हैं, यहां की बात करेगा, अगर हम तैयार होते हैं, हम कंप्लाई विद करते हैं। अगर डॉक्टर हमें कहें कि आपको 2 घंटा वॉक करनी है या 1 घंटा वॉक करनी है, भोजन ये करना है, करना तो हमें ही है ना। आज सुबह मैं सुन रहा था जो हमारा प्रोग्राम चलता है हार्ट डिजीज के बारे में, कुछ लोग अपना अनुभव सुना रहे थे। तो जो कुछ भी हमें बाबा की डायरेक्शंस मिलती हैं, वो फॉलो तो हमें करनी है। जितना हम फॉलो करेंगे उतना हम प्राप्ति हमें होगी, क्योंकि परसेंटेज वो प्रोपोर्शनेट हो जाती है। तो इसलिए हमारे जीवन का पुरुषार्थ, हमारी मेहनत ही रंग लाएगी, और मेहनत से ही हमारे जीवन में प्राप्ति होगी। क्योंकि एक है स्टडी, एक है पालना, और तीसरी है अटेनमेंट। बाबा से हमें पालना भी मिल रही है, पढ़ाई भी मिल रही है, और प्राप्ति तो होगी ही होगी। अगर हम पढ़ाई पे और पालना पे ध्यान देंगे तो उससे प्राप्ति होगी। तो प्राप्ति तभी होती है जब हम पढ़ाई पर और जब बाबा से हमें श्रीमत मिलती है। ना तो मन हमारा मनमानी करे, ना बुद्धि हमारी मनमत पे चले, तो ही हमारे जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, प्रोग्रेस कर पाएंगे। हर कदम पे हम मनमना भाव भी रहे और बुद्धि भी श्रीमत पर चले, तो सब कुछ सहज हो जाएगा। ओम शांति।